Om Namah Shivaya. Dear listeners of Shaivam.org, the next program is Spiritual Discourse. In this, you are about to listen Svetashvatara Upanishad, Chapter 4, presented by Sri Atmananda Giriji Maharaj. Thank you. Om Namah Shivaya.
Om Dhyaye Nityam Mahesam Rajata Giri Nibham Charuchandravatansam Ratnakalpojvalangam Parasumrigavara Vetihastam Prasannam Padmasinam Samantat Stutamamaragadir Vyagrakrityam Vasanam Visvadhyam Visvavandhyam Nikhilabhayaharam Panchavaktram Trinetram Narayanam Padmabhavam Vasishtam Shaktim Chatat Putra Parasarancha Vyasam Sukam Gauda Padam Mahantam Govinda Yogindra Mathasya Sisyam Sri Sankaracharya Mathasya Padma Padancha Hastamalakancha Sisyam Tanto Takam Vartika Karamanyan Asmat Guram Santatamanatosmi Vishuddha Jnana Dehaya Trivedi Divya Chakshuse Sriyaha Prapti Nimittaya Namaha Somartha Dhari Om Shanti 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 Shivaya Nama Om Shivaya Nama Om Shivaya Nama Om Namah Shivaya Shivaya Namah Om Shivaya Namah Om Namah Shivaya Shivaya Namah Om Shivaya Namah Om Shivaya Namah Om Namah Shivaya Shivaya Namah Om Shivaya Namah Om Namah Shivaya Haraya Namah Om Haraya Namah Om Haraya Namah Om Namo Haraya Haraya Namah Om Haraya Namah Om Haraya Namah Om Namo Haraya Babaya Namah Om Babaya Namah Om Namo Babaya
Babaya Namah Om Babaya Namah Om
Babaya Namah Om Namo Babaya Babaya Namah Om Babaya Namah Om Babaya Namah Om Namo Babaya
Babaya Namah Om
Babaya Namah Om Babaya Namah namah om namo bhavaya mridaya namah om mridaya namah om mridaya namah om namo mridaya mridaya namah om mridaya namah om mridaya namah om namo mridaya Shivaya namah om Shivaya namah om namah Shivaya
Shivaya namah om
Shivaya namah om Shivaya namah om namah Shivaya Bhajamana Shiva Shiva Nirantaram Japamana Shiva Shiva Nirantaram
Bhajamana Shiva Shiva Nirantaram
Japamana Shiva Shiva Nirantaram Rattamana Shiva Shiva Nirantaram Smaramana Shiva Shiva Nirantaram
Rattamana Shiva Shiva Nirantaram
Smaramana Shiva Shiva Nirantaram Namah Parvati Pataye Har Har Mahadev.
Oh, oh, oh. Krishna Yajurvediya Mantra Upanishad ke antargat Shweta Aswatara Upanishad ka prasanga hai chaturtha adhyay mein छठा मंत्र द्वासुपर्णा सयुजा सखाया
द्वासुपर्णा सयुजा सखाया
समानं वृक्षं परिश्वस्य जाते
समानं वृक्षं परिश्वस्य जाते
तयोरन्यः पिप्पलं स्वादुवत्ति
त्वयोरन्यः पिप्पलं स्वादुवत्ति
अनस्नन्यो अविचाकसीति
अनन्यं शन्नयो अविचाकसीति
अनस्नन्यो अविचाकसीति
अनस्नन्यो अविचाकसीति
समाने वृक्षे पुरुषो निमग्नो
समाने वृक्षे पुरुषो निमग्नो
अनीशया शोचति मुह्यमानः
अनीशया शोचति मुह्यमानः
जुष्टं यदा पश्यत्यनन्यमीशम्
जुष्टं यदा पश्यत्यनन्यमीशम्
अस्य महिमानमिति वीतशोकः
अस्य महिमानमिति वीतशोकः
रसोच्चारण करो अस्य महिमानमिति वीतशोकः ऋचोऽक्षरे परमे व्योमन्
ऋचोऽक्षरे परमे व्योमन्
यस्मिन् देवा अधिविश्वे निषेदुः
यस्मिन् देवा अधिविश्वे निषेदुः
यस्तु
ஹ்யஸ்தம் ந வேதா கிம் ரிசா கரிஷ்யதி யா இத்தத் விதுஸ்தா இமே சமாஸதே சந்தாம்சி யஜ்ஞா க்ரதவோ வ்ரதானி பூதம் பவ்யம் யச்ச வேதா வதந்தி அஸ்மான் மாயி ஸ்ருஜதே விஸ்வமேதத் தஸ்மிஶ்சான்யோ மாயயா ஸன்நிருத்தஃ மாயாம் து ப்ரக்ருதிம் வித்யான்
மாயாம் து ப்ரக்ருதிம் வித்யான்
மாயினம் து மஹேஸ்வரம்
மாயினம் ச மஹேஸ்வரம்
தஸ்யாவயவபூதேஸ்து
தஸ்யாவயவபூதேஸ்து
வ்யாப்தம் ஸர்வமிதம் ஜகத்
வ்யாப்தம் ஸர்வமிதம் ஜகத்.
உபநிஷத் தர்சன் கே அந்தர்கத் யே மந்த்ர பஹுத் பிரசித்த மந்த்ர ஹை. இஸ்ஸே பஹலே கா பாஞ்ச்வா மந்த்ர ஔர் யே சட்டா மந்த்ர சபி உபநிஷதோ மே பஹுத் பிரசித்த ஹை, க்யோங்கி யே வேத கே தோனோ பாகோ மே ஹை. மந்திர பாக மே பி ஹை, ஆரண்ய பாக மே பி ஹை, க்யோங்கி சாரே வேதாந்த கே ரஹஸ்ய கோ யஹி மந்திர ஸ்பஷ்ட கர்த்தே ஹை. இஸ்லிய சந்த பரம்பரா மே யே மந்திர பஹுத் பிரசித்த ஹை, பிராய சபி கோ கண்டஸ்த ஹை ஔர் பிராய சபி இன் மந்திரோ கோ பிரமாண கே ரூப் மே லேதே ஹை. தாசுபர்ணா சயுஜா சகாயா எக் ரூபக் கே மாத்யம் சே தத்வ சம்ஜா ரஹே ஹை கி தோ ஏசே சுபர்ண ஹை சுபர்ண சப்த கா அர்த்த ஹோத்தா ஹை சுந்தர் பங்க வாலே. பர்ண சப்த கா அர்த்த ஹோத்தா ஹை பத்தா ஔர் பர்ண சங்க கா அசப்த கா அர்த்த ஹோத்தா ஹை பங்க. இஸ்லிய பங்க கே சல்தே ஹி உன்கோ பக்ஷி கஹா கயா. दो पक्षी ऐसे हैं, रूपक यह है कि दो पक्षी ऐसे हैं इस संसार में, बड़े सुंदर हैं, सुपर्ण हैं, सयुजा हैं, दोनों एक साथ घूमते हैं, एक साथ फिरते हैं, एक साथ रहते हैं, दोनों सखा हैं. सखा शब्द का अर्थ होता है एक के ज्ञान से दूसरे का स्वतः ज्ञान हो जाता है जहां, उसको सखा कहते हैं. समान ख्याति सखा, दोनों ही दिखाई पड़े तभी दो का ज्ञान होगा, ऐसा नहीं दो में से एक को देख लोगे तो दूसरे का स्वतः ज्ञान हो जाएगा, क्योंकि दोनों हमेशा एक ही साथ रहते हैं. एक देख लिया और दूसरा नहीं देखा तो इसका मतलब दूसरा नहीं है, ऐसा नहीं होता. एक है तो दूसरा भी वहां है. सखा शब्द का अर्थ ये होता है. रहते कहां हैं ये दोनों, तो बोलते हैं समानम वृक्षम, एक ही वृक्ष में रहते हैं ये दो पक्षी, एक ही वृक्ष में रहते हैं.
कौन सा वृक्ष? तो आप लोगों ने कई बार उपनिषदों के माध्यम से कठोपनिषद में गीता के 15वें अध्याय में संसार को वृक्ष के रूप में अपने पढ़ा है, सुना है और शरीर को ही वृक्ष के रूप में पढ़ा है, सुना है। व्यष्टि में एक शरीर एक वृक्ष हो सकता है तो समष्टि में ये संसार ही एक वृक्ष हो सकता है। परिश्वस्य जाते हैं, तयोरन्यः पिप्पलम् स्वादवती। परिष्वक्त शब्द का अर्थ होता है परिता, पूर्ण रूप में अच्छी तरह से, स्वक्त आश्रित। एक ही वृक्ष में आश्रित है। तयोरन्यः, ये दोनों में से, दो पक्षियों में से किसके क्या विशेषता है? तो बोलते हैं तयो हो वो दो में से, अन्य माने एक। पिप्पलम स्वादु अति, पिप्पल के फल को बड़े स्वादिष्ट से खाता है। दो पक्षियों में से एक एक, एक पक्षी ऐसा है वह पिप्पल के फलों को बड़े स्वाद से खाता है। दूसरा पक्षी क्या करता है? तो बोले अनन्यन अन्यो, अनस्नन अन्यो, अन्य माने दूसरा, अनस्नन बिना खाए अविचाकसीति, देखता रहता है। अविता चाकसीति, प्रकाशित करता है, देखता है। इसी को अन्य उपनिषद में भोक्ता भोग्यम प्रेरितारम च मत्वा ये भी कहा है। संसार में तीन वस्तु हैं, एक भोग्य वस्तु, दूसरा भोक्ता व्यक्ति और तीसरा प्रेरिता, भोक्ता को भोग के प्रति प्रेरणा करने वाला, प्रेरित करने वाला प्रेरिता। जो अन्य उपनिषद में इस तरह भोक्ता भोग्यम प्रेरिता कहा गया है उसी को इस उपनिषद में द्वौ सुपर्णा सयुजा सखाया समानम वृक्षम परिश्वत सुजाते तयोरन्य पिप्पलम स्वादवत्ती अनस्नन अन्यो अविचाकसीति। कौन है ये दो? तो बोलते हैं जीवात्मा और परमात्मा। ये दोनों को पक्षी कहा। पक्षी शब्द का अर्थ होता है एक जगह एक ही वस्तु में आश्रित न होकर अन्य आश्रय को खोजता रहता है, उसको पक्षी कहते हैं। इसलिए वैदिक सनातन धर्म में ये कहा गया है कि जीवात्मा एक उपाधि में नहीं रहता। कि जीवात्मा के अनेक उपाधि हो सकते हैं, कर्म अनुसार वासना अनुसार कभी भी किसी भी समय में वह कुछ भी कोई भी उपाधियों को आश्रय ले सकता है। उपाधि शब्द का अर्थ आप लोग समझ चुके होंगे, शरीर। जैसे किसी भी पक्षी को एक वृक्ष पर हमेशा रहता हुआ नहीं देखेंगे, वो उड़ता है, कभी किसी पेड़ पर रहता है, कभी किसी पेड़ पर रहता है, उसकी यही दिनचर्या है। इसी तरह जीवात्मा भी कभी किसी शरीर में रहता है, कभी किसी शरीर में रहता है, ये उसकी जीवनचर्या है। दो शब्द संस्कृत में प्रयोग होता है, दो को ही यहां द्वा कहा। और स्वामी अखंडानंद जी कहते हैं इस मंत्र की व्याख्या में, गुजरातियों ने शायद इसी मंत्र से लिया होगा, द्वौ द्वा बे, गुजराती में बे कहते हैं ना। संस्कृत मूल शब्द है दो, उसमें से औकार हट गया तो द्वा, उसमें से आ हटाकर उसको फिर ऊपर ले गए तो बे, तो चाहे बे कहो चाहे द्वा कहो चाहे दो कहो, इन शब्दों के द्वारा यही संकेत किया जाता है कि वस्तु दो हैं। सुपर्ण दोनों सुपर्ण हैं, अर्थात उनके पंख बहुत अच्छे हैं। यहां पंख शब्द का अर्थ लाक्षणिक है, केवल वाच्यार्थ में नहीं लक्ष्यार्थ में है। पंख शब्द का अर्थ होता है चैतन्य, दोनों चैतन्य हैं। ईश्वर भी चैतन्य है यानी परमात्मा भी चैतन्य है और जीवात्मा भी चैतन्य है, और चैतन्य के होने के कारण ही दोनों ही सुपर्ण हैं, दोनों सुष्टु हैं, सुंदर हैं, बड़े सुंदर हैं। बड़े चमकते हुए पंख हैं इनके, संयोज है कि एक साथ हमेशा रहते हैं, ऐसा नहीं कि कोई एक यहां रहे कोई दूसरा कोई अन्य जगह रहे, ऐसा नहीं कि एक पहले पैदा हुआ और दूसरा बाद में पैदा हुआ। यूं तो इससे पहले कह दिया गया है, पहले मंत्र इस मंत्र के द्वारा यह कहा गया है कि दोनों पैदा नहीं हुए हैं। अजामे काम लोहिता शुक्ल कृष्णाम भवि प्रजा सृजमाना सरूपा अजो एको जुष्माणा अनुसेते जहाते नाम भुक्त भोगा अजो अन्य। इससे पहले मंत्र में जो दो अजों की चर्चा हुई है वो दोनों अज जीवात्मा और परमात्मा के बारे में कहा गया है, दोनों की पैदाइश तो नहीं हुई है। फिर भी उपाधि से संबंध होने के जो प्रसंग है वो दोनों का एक ही साथ उपाधि से संबंधित हुए हैं। आपको ये शब्द थोड़ी कठिनाई महसूस हुई होगी, पैदा तो नहीं हुए हैं फिर भी उपाधि से संबंध होने के क्रम में दोनों एक ही साथ उपाधि से संबंधित हुए हैं। इसका अर्थ क्या हुआ महाराज? तो जीवात्मा जिस समय जीवात्मा ने उपाधि धारण की या शरीर आदि, उसी समय परमात्मा ने भी उपाधि धारण की है। जीवात्मा ने सबसे पहला उपाधि कौन सा उपाधि धारण किया? आप लोग वेदांती हो इसलिए प्रक्रिया मालूम है, आप कह सकते हो स्वाध्यायी हैं तो। सत्वशुद्ध विशुद्धिभ्य माया विद्य चते मते माया बिंब वशीकृत्य ताम स्यात् सर्वज्ञ ईश्वरः अविद्यावशगस्तु अन्य तद वैचित्र्यात् अनेकदा। ये दो उपाधि हैं, एक विशुद्ध सत्व अर्थात माया, दूसरा मलिन सत्व अर्थात अविद्या। मलिन सत्व अविद्या जिसको कहा गया है, जिसको मलिन सत्व कहा उसी को अविद्या कहा। प्रथम जो अज है यानी प्रथम पक्षी है, उसने सबसे पहले अविद्या को ही अपनी उपाधि मान ली, अपना उपाधि बना लिया। और जिस समय यह जीवात्मा ने अविद्या को अपनी उपाधि बना ली, प्रथम उपाधि, उसी समय में उस परमात्मा ने माया को, विशुद्ध सत्व को अपनी उपाधि बना ली। इसको दूसरे भाषा में यदि कहना हो कार्योपाधिरयम जीव कारणोपाधि ईश्वर कार्यों को जिसने अपनी उपाधि बना ली है वह जीवात्मा और कारण को जिसने अपनी उपाधि बना ली है वह परमात्मा। कारणोपाधि वाला चैतन्य का नाम परमात्मा, कार्यो उपाधि वाला चैतन्य का नाम जीवात्मा। आप तो ये तो बता सकते हो, हम पूछेंगे पहले मिट्टी बनकर बाद में घड़ा बना है कि पहले घड़ा बनकर बाद में मिट्टी बना है? पहले मिट्टी बनकर बाद में घड़ा बना है, ये बात तो आपको समझ में आ गई है। इससे ये सिद्ध हुआ कि पहले कारण हुआ बाद में कार्य हुआ। यदि इस प्रक्रिया से कार्य कारण की दृष्टि से विचार करेंगे तो पहले ईश्वर हुआ उसके बाद जीव हुआ, ये मानना पड़ेगा ना। पहले धागा बना कि कपड़ा बना? पहले धागा बना बाद में कपड़ा बना, तब आपको ये मानना ही पड़ेगा कार्य कारण की दृष्टि से। कार्य कारण पहले हुआ कार्य बाद में हुआ, तब इससे यह सिद्ध हुआ कि कारणोवच्छिन्न चैतन्य पहले सिद्ध हुआ कार्यावच्छिन्न चैतन्य बाद में सिद्ध हुआ। अब तो समझ गए आप इस प्रक्रिया को। जब सामान्य नियम यह है कार्य कारण की जो पृथकता भिन्न भिन्नता, तब फिर ये क्यों कहा संयुजा क्यों कहा, एक ही साथ पैदा हुए ये क्यों कहा? तो वेदांत यानी श्रुति कार्य कारण का जो भेद है वह वास्तविक भेद नहीं है। एक दूसरा प्रश्न मैं आपसे पूछ लूं, आप जब स्वप्न में देखते हो, स्वप्न देखते हो, उस समय आपने स्वप्न में एक गाय को देखा, पता नहीं क्या देखा, गाय देखा कि कुत्ते देखा, जो देखा है एक गाय को देखा मान लो, और आपने उस गाय के साथ उसके बछड़े को भी देखा। एक गाय को देखा जो अपने बछड़ों को दूध पिला रही है, तो सामान्य नियम के अनुसार क्या सिद्ध हुआ? गाय कारण है, बछड़ा कार्य है। तो सामान्य नियम से यही सिद्ध होगा कि कारण पहले सिद्ध होगा और कार्य बाद में सिद्ध होगा। तो क्या आपके स्वप्न में वो गाय कारण और बछड़ा कार्य जो आपने देखा, पहले गाय पैदा होकर फिर बाद में बछड़ा पैदा हुआ है क्या? बोलो। या मैं आपको दूसरा प्रश्न दूं,